फिर इसी तरह मुसीबतों के आने के बाद आमाल का हसब साबिक लिखा जाना और नेकी करते हुए मरने पर इसी हालत में उठाया जाना, इन तीनों की फिर मज़ीद डिस्क्रिप्शन है, आप ज़रूर पढ़िएगा बुक में, बहुत आपको बारीक बातें भी मिलेंगी। लेकिन अगर मैं आपको अपने हवाले से पहली चीज़ अगर थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन करूँ कि हर लम्हे ये ख़तरा रहे कि मेरे हाथ से ये नेकी ना चली जाए, इसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा से इमाम मुस्लिम ने रिवायत नकल की है। यकीन करें ये हदीसें हम सब को एक एक लफ्ज़ अपने सीने में उतारने की दावत देती हैं। क्या फरमाया? बादिरुल बिल आमाल, ऐसे फितनों से पहले जो कि तारीख शब के टुकड़ों की मानित होंगे, अच्छे अमाल करने में एक दूसरे से भड़कर जल्दी करो। आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, या शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर होगा। वह दुनिया के साजो सामान के बदले में अपने दीन को बेच देगा। क्या पता चला कि नेकियों में जल्दी करें। आपने फरमाया कि फितनों का दौर आ रहा है और इन फितनों में एक इंसान अपने आप को नेकी पे जमा ले, ये बहुत बड़ी बात है। सच बताएं कि आज आपको वो दौर नहीं लगता? बड़ा खुश नसीब है वो बंदा कि जिसको नेकी का मौका दिखे और वो अपना ले। आप नेकी करना चाहते हैं, 10 लोग आपकी टांग खींचेंगे, 10 लोग आपसे हकूक के नाम पे हक लेने आ जाएंगे, 10 लोग आपको ताना देंगे। आप बाजारों में सारा दिन फिरे, कोई नहीं पूछता आप दीन के लिए निकले किधर गई थी, क्यों गई थी, देर क्यों हो गई, रोटी क्यों नहीं पकी। एक औरत सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक जॉब पे जाती है फुल टाइम, बच्चे भी हैं, मियाँ भी है, फिर वो ठंडी भी खा लेते हैं, वो गर्म भी खा लेते हैं, वो खुद भी बना लेते हैं, इट्स ओके, क्योंकि एंड पे घर में यूरोज आ रहे हैं, महीने के बाद कोई 1000-1200 आता होगा। लेकिन आप दीन के लिए निकले, सारे खानदान में आपका रिकॉर्ड लगा देंगे, देखो देखो ये औरतों ने क्या काम शुरू कर दिया, घरों को नहीं देख रही, पढ़ने जा रही हैं। तो ये फितने आएंगे और इन फितनों का इलाज एक ही है कि इंसान अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह तू मेरे लिए इन चीज़ों को आसान कर दे। एक और हदीस बहुत ही खूबसूरत है, ये सारी आपने पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ आपके लिए रिमाइंडर है। इमाम बुखारी अब्दुल्ला बिन उमर से नकल करते हैं, आपने फरमाया कुन फि दुनिया का अन्नक गरीब नवाबरिस सबील। ये हदीस भी मुझे ऐसे लगता है कि हम सबको जुबानी याद करनी चाहिए। आप मेरे साथ दोहराइए कि ये छोटे से एक टुकड़ा है अल्फाज का, कुन फि दुनिया का अन्नक गरीब औ आबिरुस सबील, यानी दुनिया में उस मुसाफिर की तरह रहो बल्कि राहगुजार की तरह, यानी एक ट्रांजिट पैसेंजर होता है ना, आप यहाँ से जब पाकिस्तान जाते हैं तो कभी कभी आपका दुबई में स्टॉप होता होगा, कभी हो सकता है आपको पहले लंदन ले जाते होंगे, है ना। तो वो जो लंदन या दुबई या अबू धाबी एयरपोर्ट पे आपके चंद घंटे होते हैं ना, वो ट्रांजिट है, उसमें तो हाथ भी खाली दिल करता है, क्योंकि सामान के साथ एयरपोर्ट्स पे फिरना पसंदीदा अमल नहीं लगता। बस मेरी आपकी दुनिया की ज़िंदगी इतनी है, ये जो हम आप ढेरों सामान जमा कर लेते हैं ना, ऐसे लगता है कि इससे पहले ना चीज़ थी और ना कभी आइंदा मिलनी है, ये पसंदीदा अमल नहीं है। दिल रज्जा होना चाहिए, ज़रूरत की चीज़ है, मौके की चीज़ है ले लीजिए, किसी को देना है ले लीजिए, लेकिन हवस नहीं होनी चाहिए। बस लोगों में क्रेविंग होती है, तो आपने फरमाया कि एक मुसाफिर की तरह रहो। और इबन उमर कहा करते थे इज़ाम सई तफला तन तजिर सबाह, बहुत प्यारे अल्फाज है, कहते हैं कि जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतज़ार ना करो, यानी आज शाम होगी तो मैं बिल्कुल ना गुमान करूं कि मैं कल सुबह जिंदा होंगी, और जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतज़ार ना करो। हम क्या करते हैं, नाश्ते की टेबल पे सोचते हैं शाम को क्या पकाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे, शर्म ही आने लगती है बंदे को कि हम सिर्फ खाते ही हम पेटू हैं, तो अब क्या खाएंगे, और हमारा तो पसंदीदा शुगल ही है। नाश्ते में पूछते हैं अब लंच में क्या खाएंगे, अच्छा शाम की चाय के साथ क्या मंगाऊं, अच्छा रात को, यानी हमारी मोहब्बत का 90% इसार खिला के और खा के होता है। अच्छी बात है हॉस्पिटैलिटी, लेकिन बाज़ दफ़ा ये ज़िंदगी का मकसद बनने लगता है, वो ठीक काम नहीं होता। फिर तीसरी चीज़, तुम अपनी सेहत से बीमारी के लिए ले लो। देखिए जब हम सेहतमंद होते हैं हमें एहसास ही नहीं होता, हम ऐसे घोड़े की तरह दौड़ रहे होते हैं, और जब बीमार होते तो बाज़ दफ़ा अपने घर में चलना फिरना मुश्किल होता है, वॉशरूम में जाना मुहाल होता है, क्या पता कल क्या हो, किसको पता, सच बताए, चलते चलते पाँव मुड़ता है और बंदा बेड पे आ जाता है। हमारी एक सिस्टर है तो वो अपने बाग में, वो कहती हैं कि मैं जैसे वो नीचे जड़ी बूटियां नहीं उग जाती या कोई धागे थे तो पीछे गार्डन में गई हैं जब, तो वहां से वो कहती है मैंने ऐसे झुक के ना, तो वो एक कोई वहां से कचरा उठाया या कोई जड़ी बूटी थी और कमर का मोहरा हिल गया। वो दिन और आज का दिन शायद 10 साल हो गए हैं, वो जीती रोती मरती हैं। एक डेस्क हिली, फिर दूसरी हिली, फिर ऑपरेशन हुए और शुरुआत हुई सिर्फ अपने अलाउन में से कुछ दिन के तोड़ने में बहाना बनता। ये किसको पता कल क्या होगा। फिर आप बिस्तर पे लेट के रोते हैं कि अब तो हम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते। सजदा करना कितना मुहाल लगता है हमें। एक वक्त आ सकता है कि हम सजदा करें ही ना। मैं कभी सिस्टर्स को देखती हूँ बैठ के पढ़ती हैं, झुकती नहीं है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ये दौलत आखिर वक्त तक ना छीनना। जो सर सजदे में रख के मजा आता है वो कोई वैसे आ सकता है। खड़े होके हम सारा वक्त भाग भाग के किचन में काम करें, इधर उधर नमाज पढ़ेंगे, बैठ के पढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्या पता कल हम खड़े हो ही ना सके। फिर इसी तरह आप देखिए कि अपनी जिंदगी से अपनी मौत के लिए ले लो। क्या खत्म हो गया उनका जो चले गए। कल भी हमारी फैमिली में 29 ईयर्स का एक लड़का फौत हुआ, अनमेरिड। बाप भी मर गया, उसके बाद बच्चा कहीं कमाने के डेथ हो गई अचानक सडन। माँ एक बाप का भी गम नहीं भुगत रही, अब जवान बेटे का गम आ गया, किसको पता है। तो आज ये वक्त जो मेरे आपके हाथ में, यही है असल में, बाकी सब कुछ तो बाकी पीछे है। तीसरी हदीस देखिए पेज 144 पे, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। और ये छोटी छोटी हदीसें अपने बच्चों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि शुरू से उन मासूमों के जहन में जिंदगी की वैल्यू लगाइए। बस जब हम अपने बच्चों को दौलत का सही इस्तेमाल सिखाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि दौलत का अच्छा कैसे इस्तेमाल करना है कैसा नहीं, वक्त का इस्तेमाल नहीं सिखाते। तो हदीस देखिए, हजरत इब्ने अब्बास से, ये हाकिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया, एक तनिम खमसन कबला खम्स, शबाब का कबला हरमी का, व सेहत का कबला सुकमी का, व गना का कबला फकरी का, व फराग का कबला शुगली का, व हयात का कबला मौती का। इस पे एक लेक्चर भी है हमारा, पांच चीज़ों को पांच से पहले, गनीमत जानो। इंग्लिश में यासिर काजी साहब का भी एक लेक्चर है, 5 बिफोर 5, वो इसी हदीस के ऊपर है, अगर आप सुनना चाहें कि पांच से पहले पांच को गनीमत जानो। अब एक एक अपने ऊपर लें, है वो चीज़ अभी तो शुक्र कीजिए, चली गई है तो फिर दूसरों को समझाएं कि अब आप उस वक्त का इस्तेमाल कर लें। क्या है वो पांच चीज़ें। बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी को, अपनी बीमारी से पहले अपनी सेहत को, अपने फ़क्र से पहले अपनी तवंगरी को, और अपनी मशगूलियत से पहले अपनी फरागत को, और अपनी मौत से पहले अपनी ज़िंदगी को। है ना गोल्डन वर्ड्स। वो कहते हैं ना, गया वक्त हाथ नहीं आता। बचपन खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। जवानी जाकर ना आए, बुढ़ापा आ जाए तो वापस ना जाए। आज दुनिया में हम सारा तरफ ये देखते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हम कहते हैं नहीं, लो अब जवानी में अल्लाह के रास्तों में निकलो। हालांकि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। आप में से जो जितना कम उम्र है ना, वो हम सब में से उतना खुशकिस्मत है इस वक्त भी। अक्सर कोर्सेज में जब बच्चियां आती हैं तो सबसे यंग बच्ची को मैं उठा के कहती हूँ, बेटा आप इन सारे लोगों से खुशकिस्मत है, क्योंकि आपका नामे अमल अभी इतना गंदा नहीं हुआ, और अल्लाह ने आपको अभी से मौका दे दिया है कि आप अपने आमाल नामे को साफ रखें। एक 60 साल की औरत आती है और एक 16 साल की आती है, वो 60 साल के गुनाहों को माफ कराएगी इस सफर में, आपके तो अभी कच्चे कच्चे कागज हैं। तो दुआ कीजिए कि हमारे बच्चे बचपन में, जवानी में ही अल्लाह के रास्तों की तरफ लग जाए। फिर चौथी हदीस इमाम बुखारी से हजरत अली के नाते से मिलती है, फरमाया, दुनिया मुंह मोड़ कर जा रही है और आखिरत अपना रुख हमारी तरफ मुतवज्जो करके आ रही है। दोनों में से हर एक के बेटे हैं, तुम आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटों में शामिल ना हो जाओ, क्योंकि आज वक्ते अमल है और आखिरी हिसाब नहीं, कल हिसाब है और फुर्सते अमल नहीं। मैं इस हदीस को कैसे सोचती हूँ, कोई कहता ना आराम करें, तो मैं कहती हूँ कब्र में करेंगे, थोड़ा सो जाए, कब्र में सोएंगे। आपको पता है कि हदीस में आता है कि मोमिन को मौत के बाद कब्र में सुला दिया जाता है, नम कनौ मतिल उरूस, सो जाओ जैसे नई दुल्हन सोती है। उसको कोई नहीं उठाता सिवाय उसका प्यार करने वाला, उसके अलावा लोग कहते हैं इसको आराम करने दो। क्यों? क्योंकि वो सारी जिंदगी काम करके आता है। अगर आज इस दुनिया में मैंने आपने आराम कर लिया तो कब्र में क्या करेंगे। अल्लाह के रास्तों में भाग लें जो भागना है। यकीन करें, ईमान की जो निगाह होती है ना, वो एक कारोबारी की तरह होती है। आपने देखा होगा आप में से जिनके मर्द बिजनेस करते हैं, हर वक्त उनकी नजर नफे नुकसान पे होती है। ये सौदा ले लें तो फायदा होगा, अब ले लें कल बेच लेंगे, अब ये कर ले वो कर ले। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, हलाल में बरकत है अल्लाह के हुक्म से। मोमिन नेकी के हर मौके को कमोडिटी बनाता, ये मेरा रासुल माल है, ये कैपिटल है, इसको ले लेता हूँ ताकि दूसरी जगह इस्तेमाल कर दूंगा। अब देखिए कि सिर्फ सोच पैदा हो जाए ना, तो हम सारा दिन जो कुछ कर करा रहे होते हैं ना, वो नेकियों में कन्वर्ट हो सकता है। आप जान से पकसन जाएंगे, आप कहते हैं बहन है उसको गिफ्ट दे दूं, भाई है उसको दे दूं, फलां को दे दूं। आपके पास तो पैसे अल्लाह ने दिए हैं, कुछ गरीब रिश्तेदारों के लिए कुछ ले दें। कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, सस्ती मिल रही है, ले लीजिए। आप उन नेक लोगों को अपने खानदान के दे आइएगा, जो पहनेंगे तो आपका सदका जरिया बनेंगे। समझ आ रहा है? यानी हम बाज़ दफ़ा मुंह मुलाहजे के लिए देते हैं, जो आपको देते हैं आप उसको देंगे। कभी नेकियों की नज़र से करके देखिए, हमारे घरों में कभी इतना गंद जमा ही ना हो, हम इस्तेमाल नहीं करते। कितने गरीब लोग हैं हमारे मुल्कों में, आप देखिए कि जिनके पास सर्दियों में स्वेटर नहीं होते। आप यहां से जाएं, अपने सारे स्वेटर ले जाएं, जिसको आप नेक समझते हैं, इवन अल्लाह के बंदे तो सारे ही होते हैं। यानी कहने का मतलब कि सिर्फ लेन देन वालों को ना देंगे, जो आपको दे रहे हैं आप उसको दें, वो तो आपकी दुनियादारी है। आप अपनी नेकी बनाएंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपकी खुद ब खुद सीधी होती जाएंगी। पांचवी जो इमाम बुखारी के अशआर बड़े खूबसूरत है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। एक तनिम फिल फराग ही फदलर रुकूई, कहते हैं फरागत में रुकू की फजीलत पाने को गनीमत जानो, शायद कि तुम्हारी मौत यकायक आ जाए। मैंने कितने खालियस बीमारी तंदुरुस्त लोग देखे हैं कि इनकी सेहतमंद जान अचानक चली गई। और आजकल तो हम दिन रात अचानक मौतें सुन रहे हैं, पता भी नहीं होता। यकीन करें, कई कई साल के बीमार लोग जो है ना, वो अल्लाह के हुक्म से बच जाते हैं, और अचानक हार्ट अटैक होता है, नहीं बचता बंदा। बूढ़े को हार्ट अटैक होगा ना, वो बच जाएगा। जवान को हार्ट अटैक होता है, वो नहीं बचता, क्योंकि उसके जिस्म की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अल्लाह ताला सबको बचा कर रखे। फिर इसके बाद जो दूसरा टॉपिक इसके अंदर था कि मुसीबतों के आने के बाद अमाल का हस्बे साबिक लिखा जाना, तो मुयस्सर आने वाले मौके को गनीमत समझकर ज्यादा से ज्यादा अच्छे अमाल पर आमादा करने वाली बातों में एक ये है कि बीमारी, सफर वगैरह की बिना पर हालात की तब्दीली के बाद भी नेक अमाल सेहत और इकामत के जमानों ही के मुताबिक लिखे जाते हैं। पीछे बात हुई थी ना कि जो नेकी आप आम दिनों में करते हैं, सफर में अगर वो नेकी नहीं कर पाते, अल्लाह आपको अजर देगा। सेहत में करते थे, बीमारी में नहीं कर पाते, अल्लाह अजर देगा। इस पे तीन रिवायत नोट कर रहे हैं, ये इमाम बुखारी से अबू बरदा की रिवायत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कहते हैं जब बंदा बीमार हो जाए या सफर करे, तो इसके लिए वैसे ही अमाल लिखे जाते हैं जैसे कि हालत इकामत और जमाना सेहत में किया करता था। तो क्यों हम करें आम दिनों में, ताकि जब बीमार हों तो हमारे बिहाफ पे वहां से मिले। आपने पेंशन का लफ्ज़ सुना ही होगा, हर मुल्क में होती है। आप देखिए कि जो इम्प्लॉई अपने वक्त में सही काम कर कर आके उनके साथ मामला बेहतर रखता है, तो जब वो बीमार हो जाता है या अल्लाह ना करे किसी तकलीफ की वजह से उसको अर्ली पेंशन लेनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करती है ना। तो बस आप और मैं ये सोच रख कर आम सेहत के दिनों में नेकियां करें, ये सोच कर कि जब हम बीमार होंगे तो फिर उसका अजर मिलेगा। अच्छा, आम दिनों में नहीं की तो बीमारी में अजर कहाँ मिलेगा, फिर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा ना। तो जैसे कुछ नाम है प्रोविडेंट फंड और लाइक गवर्नमेंट के कुछ फंडिंग, वो सारी जहन में रखें। तो नेकियां इसलिए भी बढ़ चढ़ के करें कि जब कोई उजर आ गया तो अल्लाह ताला उसके बगैर ही हमें अता फरमा देगा। फिर अबू मूसा कहते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लम से ये बात सुनी, एक बार नहीं दो बार नहीं ज्यादा बार ये बात सुनी आपसे, कि जब बंदा कोई अच्छा अमल किया करता था तो वो बीमारी या सफर ने उसे उस अमल से मशगूल कर दिया, तो उसके लिए उसी तरह का अमले सवाले तहरीर किया जाता है जैसा कि वो सही और मुकीम होने की हालत में किया करता था। तो बात वाज़े है, बहुत क्लियर है। एक और रिवायत इमाम अहमद से अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास की है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन नलब्द इज़ा कान अला तरीक़तिन हसनतिन मिनल इयादति सुम्मा मरीदा क़ील लिल मलकिल मुअक्किल बिही, बिला शुबा जब बंदा इबादत के अच्छे तरीके पर हो फिर बीमार हो जाए, तो इसके हमराह मुकर्रर करदा फरिश्ते से कहा जाता है। आप सोचे ना, अगर आप में से कोई बीमार है और नफिल इबादत नहीं कर पा रहा, तो अल्लाह ताला आपके फरिश्ते को क्या कहेगा, मेरे उसे बीमारी से निजात देने या अपने पास बुलाने तक वैसा ही अच्छा अमल लिखो जैसा कि वो सेहत के जमाने में करता था। फिर एक और रिवायत इमाम अहमद से हज़रत अनस की नाते से मिलती है हमें, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब अल्लाह ताला मुसलमान बंदे को जिस्मानी आजमाइश में मुब्तला करे تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مقرر کردہ فرشتے سے فرماتے ہیں اس کا وہی یعنی ویسا ہی اچھا عمل لکھو جو صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، بس اگر وہ اسے شفا دے دیں تو اسے گناہوں سے دو ڈھالتے ہیں اور پاک کر دیتے ہیں، اور اگر اس کی جان قبض کر لیں تو اسے معاف فرما دیتے ہیں اور اس پر رحم فرماتے ہیں۔ تو کیا خلاصہ نکلا کہ صحت میں بھڑ بھڑ کر نیکیاں کیجئے تاکہ بیماری میں آپ کو پھر خود ہی ملنا پڑے۔ ناروے کے سسٹم میں ایک لفظ ہوتا ہے سک لیو، جب لوگ جاب کرتے ہیں نا تو پھر بیچ میں اگر بیمار ہو جائیں تو ان کو سک لیو ملتی ہے، ادھر بھی ملتا ہوگا۔ اچھا وہ لوگ پھر بیمار ہیں، گھر پہ ہیں، کام نہیں کر رہے، لیکن جتنا مال ان کو جتنی پے ملتی تھی وہ ملتی رہتی، حتیٰ کہ سال ہر سال تک لوگ سک لیو پہ چلے جاتے، کچھ کو ان کو پرماننٹ ہی سک لیو دے دیتے، تو لوگ گھر بیٹھے ہیں اور پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں۔ کتنا مزہ ہے آپ کا، صبح 7 بجے اٹھ کے جانا، سارا دن کام کرنا یا راتوں کو ٹیکسی چلانا کچھ کرنا، اور اس کے اپوزٹ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ بھی سک لیو دیتا ہے، سک فنگر کہتے ہیں اس کو کچھ اس طرح، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیماریوں کی صورت میں اور پریشانیوں کی صورت میں آپ کو بن کیے دیتا ہے، اور اگر کوئی صحت میں نہ کرے تو ملے گا؟ پھر نہیں ملے گا۔ تیسری چیز کیا ہے، ہم سب کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر کرے، نیکی کرتے کرتے مجھے موت آ جائے۔ کسی کو نہیں پتا کب مریں گے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بندہ وہی عمل کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا جسے کرتے ہوئے اسے موت آئی ہوگی، تو موت کا تو وقت نہیں پتا نا، تو پھر ہر وقت نیکی کرے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے، امام احمد اور امام حاکم کی یہ روایت ہے کہ مم ماتا علی شیئن باس اللہ علیہ، جو کسی چیز پر مر گیا اسی عمل پر اٹھایا جائے گا۔ اور اس میں بہت حدیثیں ہیں، اگر کوئی حج کے دوران احرام کی حالت میں مر گیا یا عمرے کی حالت میں مر گیا تو فرمایا قیامت کے دن وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ جو میدان جنگ میں شہید ہوا، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا فریش، اور اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اس کے برعکس کوئی زنا کرتے ہوئے مر گیا تو زنا کرتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث کا خلاصہ بھی ہے کہ جیسا تم جیو گے ویسی ہی موت آئے گی، اور جس حال پہ مرو گے اسی پہ کل اٹھائے جاؤ گے۔ تو کریں پھر کیا، اپنی زندگی کو خوبصورت کر لیں تاکہ موت اچھی آئے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا معروف دعا ہے، اچھی دعا ہے، لیکن صرف اس دعا پہ کفایت نہیں کر دینی چاہیے، اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرے۔ کہتے ہیں نا، لکھ لیں یہ بات، موت کے وقت کلمہ اس کو نصیب ہوگا جس کی زندگی کلمے کے مطابق ہوگی۔ امام ابن قیم یا امام ابن تیمیہ میں سے کسی کا قول ہے، کہتے ہیں کہ ایمان والے کے دل میں لا الہ الا اللہ ہوتا ہے ہر وقت، اس کی کیفیت ہی ہوتی ہے۔ موت کے فرشتے کو دیکھ کر خوف کی وجہ سے وہ دل کی بات زبان پہ آ جاتی ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھے جیسے اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں چور آ جائے، تو چور کو دیکھ کر جو وحشت ہوتی ہے نا، تو لوگ خود ہی بولنے لگتے ہیں چیزیں ادھر رکھی ہیں، چابیاں ادھر ہیں، وہ لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ یعنی موت جو ہوتی ہے نا، یہ خوف وہ بندے کو سچا بنا دیتا ہے۔ تو جس کے دل میں لا الہ الا اللہ وہی بولے گا نا۔ کچھ تو ایسے بد نصیب بھی ہیں، وہ کہتے ہیں مرتے وقت ہم اپنی دھنیں سننا چاہتے ہیں، ہم مرنے وقت بھی اپنے گانے ہی سننا چاہتے ہیں، ہمیں مرتے وقت بھی دھمال ہی ڈالنی ہے۔ تو جو کام زندگی میں کیا ہوگا وہی موت پہ ہوگا، اس وقت ہمارا ہوش نہیں رہے گا، یاد رکھیے۔ تو آج بہتر ہے، یعنی آپ ساری باتوں کو جو میں ابھی آج پڑھا رہی ہوں نا، میں خود کیا فیل کر رہی ہوں کہ یہ میرا وقت بڑا قیمتی ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، ہر سال، ہر دن، ہر مہینہ قیمتی ہے۔ احادیث بڑی خوبصورت ہے، اس پہ ایک شعر کر دیتی ہوں کہ دو صحابی اکٹھے کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی مسلمان ہوتے ہیں اکٹھے، ان میں سے ایک مثال ہے کہ آج فوت ہوا، دوسرا پورے ایک ہفتے کے بعد فوت ہوا۔ صحابی نے دعا کی کہ اللہ اس کو وہ پہلے کے ساتھ ملا دے، جنت میں اس کو وہی درجے دے دے جو پہلے کو ملے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ऐन सलातुहू ऐन क़ियामुहू। कहा ये जो एक हफ्ता दूसरे को जिंदगी ज्यादा मिली है ना, इस एक हफ्ते की नेकियां और आम नेकियां जो रोज सुबह शाम की है, इसने उससे पहले वाले से इसका दर्जा बढ़ा दिया। समझ रहे? इसी तरह एक रिवायत में आता है कि एक शख्स शहीद हुआ, दूसरा उसके कुछ अरसे के बाद आम तबई मौत मरा। किसी सहाबी ने ख्वाब में देखा कि जो बाद में तबई मौत मरा है वो शहीद से पहले जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अल्लाह के नबी से पूछा आकर कि ये क्या हुआ, हम तो समझते हैं कि शहीद के दर्जे ज्यादा है। कहा नहीं, जिसको एक हफ्ता लंबी उम्र मिली ना, उसे एक हफ्ते की नेकियां बढ़ गई। ये ऐसे ही है, बाज़ लोग कहते हैं पाकिस्तान जाना है, एक्स्ट्रा आवर्स लगा के जरा ज्यादा काम कर लेते हैं, पैसे जमा हो जाएंगे। क्रिसमस के सीजन में लोग डबल डबल जॉब्स करते हैं क्योंकि दूसरे एम्प्लॉयज कम होते हैं। जितना वक्त ज्यादा लगाएंगे, जितने आवर्स ज्यादा लगाएंगे, पे चेक बढ़ जाएगा। तो जिंदगी की कदर जाने, हर दिन एक तोहफा है। हर सुबह उठ के सोचा करें आज क्या करना है, बल्कि पिछली रात को प्लान बनाएं। हमारा अगले दिन का प्लान पिछले एक रात पहले बन चुका होता है कि कल किधर जाना है, सुबह कैसे उठना है, आगे क्या होगा, बाद में होकर रात सोने तक वापस आने तक एक एक चीज क्लियर होती है, वरना तो काम ही नहीं हो सकते। देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, पूछते हैं, ये हमारा कल्चर है। आधा दिन मशरों में गुजर जाता है, फिर कहता नहीं अब कुछ नहीं होना, बैठो अब कल करेंगे। आज तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अपने मुसलमान लोग अपने मुल्कों में इतने ढीले हो गए, कोई काम नहीं होता। एक हफ्ते का काम 2 महीने में होगा, और वो भी तब होगा जब सर पे बैठेंगे। आप एक काम कह कर आए, एक साल बाद जाएंगे वो काम बिल्कुल वहीं पड़ा होगा। डिलेइंग प्रैक्टिस ये पसंदीदा अमल नहीं है। तो पांचवी चीज फिर हमने क्या पढ़ी है कि जिंदगी को गनीमत जाने। छठी चीज क्या है कि तंगी में कुर्बे इलाही पाने के लिए आसूदगी में नेकियां करना। किसी वक्त भी हम पे कोई मुश्किल आ सकती है ना, तो उसके लिए अगर आम दिनों में हमने अच्छी बात की होगी, आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, एक रिवायत है, मैं सिर्फ उसका खुलासा ही दे सकती हूँ, कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में भेज दिए गए, तो वहां उन्होंने अल्लाह के सिखाए हुए कलेमात पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कुरान कहता है फी ज़ुलुमातिन सलास, तीन अंधेरे थे, पानियों का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, गमों का अंधेरा। जब यूनुस अलैहि सलाम की आवाज वहां से ऊपर अर्श पे गई, तो फरिश्तों ने कहा कि ये आवाज तो सुनी सुनाई लगती है, गौर किया, दबी दबी आवाज आ रही है, तो कहा अच्छा ये वो यूनस है जो खुशी के दिनों में रब को पुकारता था, आज इसकी जल्दी सुन लो। क्लियर हदीस है, जो खुशी के दिनों में, आसूदगी में, नेमतों में, फिर मैं कहूंगी शादियों में और बच्चों के अरमान पूरे करने में जो नेकियां करता है, अल्लाह को याद रखता है, जब उस पे गम पड़ता है ना, तो अल्लाह उसकी जल्दी सुनता है। हम तो फर्ज नमाजें भी छोड़ देते हैं, कहते हैं फजर कहाँ पढ़नी थी, हम तो रात 3 बजे आए थे घर। सच बताएं, क्या हमारी खुशियां नमाजों की कातिल नहीं होती? शादी में नमाज, ये कैसे हो सकता है? मेकअप किया हुआ नमाज, दुल्हन बनी हुई लड़की नमाज, अब बारात तैयार है नमाज, ये मगरिब पढ़ लेंगे ईशा के साथ, और ईशा पढ़ लेंगे घर आके, और ईशा फजर पढ़ेंगे जब अगले दिन सुबह 10-12 बजे उठेंगे। याद रखिए, खुशियों में रब को याद रखें, अल्लाह ताला गमों और दुखों में जल्दी सुनेगा। इसके बारे में हदीसें भी हैं, इमाम अहमद से इब्ने अब्बास की रिवायत है, कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के पीछे सवारी पर था। ये भी सहाबा की खूबसूरती है कि वह नबी सल्लम के साथ जिस एंगल में बैठे होते थे ना, उसको पेश करते थे। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ऐ जवान, इख्फिज़िल्लाह यख्फिज़का, तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, वो तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। तुम अल्लाह के अवामिर और नवाही की हिफाजत करो, तुम इन्हें मुसीबतों से बचाओ, और इनके मुकाबले पर अपने सामने पाओगे। आसूदगी में इनसे शनासाई पैदा करो, वो सख्ती में तुम्हें पहचान लेंगे। बात वाज़े, आम दिनों में ज्यादा नेकियां कीजिए ताकि जब कोई मुश्किल आए तो अल्लाह ताला जल्दी सुने। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक मिसाल देती हूँ, आप इसकी शरह बाद में खुद पढ़िएगा, बहुत डिटेल से बताई गई है। आप देखिए कि अगर आपकी दोस्त है, जब उसको कोई काम पड़े आपको फोन कर दे, मेहमान आ रहे हैं, ज़रा आ जाओ, काम कर दो। आज मेरा बच्चा बीमार है, ज़रा इसको टेक केयर कर लो। मैंने हॉस्पिटल जाना है, मेरे दूसरे बच्चों को देख लो। अब आप खुशी खुशी उसको करते हैं, वो आ भी जाएगी, कोई हर्ज की बात नहीं है। अब क्या हुआ, आपको आपकी दूसरी दोस्त ने बताया, कल आप क्यों नहीं आई दावत में, किधर थी? वो आपकी उसी दोस्त का नाम लेती है जो हर दुख तकलीफ में आपको बुलाती है, और आप खुशी से जाते हैं। पर आज उसके घर खुशी आई, आपको नहीं बुलाया, दावत की आपको नहीं बुलाया, आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे, अच्छा जी, दुखों तकलीफों में मुझे बुलाती हैं, और शादियों दावतों खानों पार्टियों में दूसरों को बुलाती हैं। इंसान होने के नाते दिल खट्टा होगा ना। चलिए इसको साइड पे कर दें, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है। जब हम सिर्फ गमों दुखों तकलीफों बीमारियों में अल्लाह को पुकारें, और खुशियों नेमतों अल्लाह की रहमतों के वक्त में कहते हैं, अल्लाह जी जरा आप इधर उधर ही हो आए तो बेहतर है, आपके आने वाली महफिल नहीं है, आपके फरिश्तों को तो जरा आप कहीं और काम पे लगा दें, हमने काफी रुकावटें लगाई हुई हैं, उधर शादियों में फरिश्ते नहीं आएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा तहज्जुद ही पढ़ लें, हम आपको सुबह मिलेंगे, इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं है कि आपको टैकल करें। कैसा लगेगा? क्या इज्जत रहेगी मेरी अल्लाह के नजरों में, क्या मेरी इज्जत रहेगी फरिश्तों की नजर में, और क्या मेरा मुकाम होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। बस इससे मेरा लगता है कि बात समझ आ गई है कि आज हमने अल्लाह और उसके रसूल को एक साइड पे किया हुआ है, और हम ये सोच लेते हैं कि इनको दूसरी तरफ कर दें। फिर इसमें आपको वो एक हदीस जो आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले सुनी पड़ी होगी, तफसीली रिवायत है कि तीन लोग किसी सफर में थे, बारिश शुरू हो गई, बारिश से बचने के लिए एक गार में पना ली, और वहां गए तो पत्थर आगे आगे और गार का रास्ता बंद हो गया। सुनी हुई हदीस, ये आपकी इस बुक में बहुत डिटेल से पूरी तफसील से लिखी हुई है, कि जिसका खुलासा क्या है, हर बंदे ने अपनी कोई नेकी याद की जो वो आम दिनों में करता था, और कहा कि अल्लाह अगर मेरी नेकी, यानी एक का अपने माँ बाप के साथ एहसान था, दूसरे का माली मामलात में अपने मुलाजिम के पैसों की केयर थी, और तीसरा जो था वो उसका नफ्स का इम्तिहान था कि उसने अपनी चचाजात बहन को आज़ाद कर दिया था उस वक़्त जबकि वो उसके ऊपर बिल्कुल काबू पा चुका था, तो हर एक ने अपनी नेकी का इजहार किया, अल्लाह ताला ने उनके लिए गार में से निकलने का रास्ता बना दिया। तो क्या पता चला, कुछ नेकियां ऐसी जरूर करें। ये जुमला लिखिए, ये हदीस पढ़िएगा, ये बुक के पेज नंबर 156, 178, तीन पेजेस पे इसकी पूरी शरह लिखी है। कुछ नेकियां ऐसी जरूर हम सब करें जो किसी मुश्किल के वक्त टोकन बनाकर अल्लाह को पेश कर सके, कि अल्लाह ये आपके लिए की थी ना। और याद रखिए, ऐसी नेकियां मुश्किल बड़ी होती हैं। जो नेकियां हमारी दूसरे देखते हैं ना, हम बड़ी खुशी से करते हैं, लेकिन मुश्किल हालात की नेकियां, हमारे बहुत सारे साथी माशाल्लाह क्लासेस में आते हैं, पढ़ने भी आते हैं और हेल्प भी करते हैं। कभी किसी का मैसेज आ जाए, आज मेरा बच्चा ज़रा बीमार है, आज मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। अब ये आप सबके लिए भी है, मेरे लिए भी है। आम तौर पे हमारा अमल क्या होता है, जब हमें सूट करता है हम नेकी करते हैं, करते हैं ना। बस आजकल आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो आपको सूट कर रहे हैं, आप आ रहे हैं। हो सकता है आज कोई ऐसी सिस्टर है जिनको आज कम सूट करता था, वो नहीं आई। अमूमी ये रवैया है ना, आप इस बात पॉइंट को जरा समझिएगा। जुमला मैं अक्सर बोलती हूँ, आप सबके लिए जैम बना देती हूँ आज के इस लेसन का। आम हालात में नेकी करने से सवाब मिलता है, मुश्किल हालात में नेकी करने से ईमान मिलता है। अब आपको जो चाहिए वो ले लें। मैं खुद अपने ऊपर लेकर इस बात को कहती हूँ, पिछले 1-1.5 महीना पहले काफी तबीयत ऐसी ही हो गई, अल्लाह के हुक्म की बात है, और वही बात है, गुनाहों की सजा भी जम्बी। साथियों ने पूरा जोर लगा लिया, आप बैठे, आप आराम करें, आप आज ना आए, आप बोलेंगी फिर ये होगा वो होगा। मैंने कहती थी मुझे आके ले जाए। कई दिन ऐसे हुए कि मैं स्कूल में लेट भी गई, मैं पढ़ा नहीं सकी, रिकॉर्डिंग से क्लास हुई लेकिन मैं अपनी जगह पे आके जरूर बैठी, मैंने एक छुट्टी भी नहीं की। वजह, मैंने कहा मैं अल्लाह को दिखाना चाहती हूँ कि अगर मैं सेहत में बोलती हूँ, आके पढ़ाती हूँ, मैं आज बीमारी में आई हूँ, मैं नहीं बोल पा रही, मैंने कुछ लेसन करा भी दिए जो मुझे पता था कि रिकॉर्डिंग में भी आवाज़ से पता लग रहा है, पर मैंने अपने लिए कराए। कल कभी मैं किसी मुश्किल में फंसूंगी तो मैं अल्लाह से कहूंगी, अल्लाह जी वो दिन याद करें हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, बोल नहीं सक रही थी, चल नहीं सकती थी, बट मैं इसलिए आई थी कि आप मेरी ये चीज़ संभाल लें और आज मेरा दुख दूर कर दें। टोकन, जैसे वो आपने अपने वॉलेट में कुछ छुपा के पैसे रखे होते हैं ना, कि कहीं मुश्किल हुई तो काम आ जाएंगे, इधर उधर रख दो। कुछ नेकियां मुश्किल हालात में करें और यकीन करें अल्लाह के रास्ते के राही। आप हज़रत खदीजा को पढ़ लें, हज़रत हाजरा के हालात पढ़ लें, मुश्किल हालात की नेकियों से ही उनके दर्जे बुलंद हुए हैं। आम हालात में सब नेकी करते हैं, इट्स कॉमन, ये कॉमन लोग होते हैं। खास लोग असाबिकून बनना है, अगर मुकर्रबीन में शामिल होना है तो मुश्किल हालात में जमे। और फाइन इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा, मुश्किल में आसानी है। मैं उनको कहती थी कि मैं इधर आ रही हूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं घर बैठी रही तो मैं ज्यादा बीमार होंगी, क्योंकि फरिश्तों ने भी देखना है और उन्होंने कहना है कि इसने रुकना तो कोई नहीं, अगर ये मेरी आजमाइश है तो मैं तो इस आजमाइश में इनको पूरा होके दिखाऊंगी। तो याद रखिए, मैं ये नहीं कहती कि हर वक्त ही इंसान इस पोजिशन में होता है, लेकिन ये जो आखिरी पॉइंट दिया है ना, इसका खुलासा क्या है कि जरा सी बात पे, जरा से उजर पे आराम से ना बैठे, अल्लाह को दिखा दे। सहाबी थे और वो कहते थे, लंगड़े थे, कहते थे कि मैं लश्कर इस्लाम के साथ जाऊंगा। कहा आप क्या करेंगे एक टांग के साथ, अब क्या करेंगे? अमर बिन जम्मूह उनका नाम था। कहते थे मैं जन्नत में लंगड़ाता हुआ जाना चाहता हूँ, मैं अल्लाह को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी एक ही टांग है लेकिन मैं जाऊंगा। अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम नाबीना थे, ब्लाइंड, अल्लाह के नबी मुझे अपने साथ ले जाए इस्लाम के लिए, आप क्या करेंगे? अब्दुल्ला कहा कि मैं लश्कर इस्लाम का झंडा पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि वो खड़ा होना होता है मैदाने जंग। जब पहले दौर में सजते थे तो जिसका झंडा गिरा दिया वो हार जाता था। कहने लगे अल्लाह के नबी, मैं झंडा पकड़ के तो खड़ा हो सकता हूँ ना, उसके लिए तो आंखों की जरूरत नहीं है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मेरा एक बाजू को काट देगा तो मैं दूसरे में पकड़ लूंगा। और जाफर तैयार का वाक्या पढ़ लीजिए, जब अल्लाह के नबी ने जंगे यरमूक के लिए उनको भेजा था तो उन्होंने इसी तरह लश्कर इस्लाम की हिफाजत की थी, दोनों बाजू कटा दिए थे अपने, इसीलिए उनको तैयार कहते हैं, उड़ते हुए जाएंगे जन्नत में, क्योंकि ये बाजू अल्लाह के रास्ते में कटाए थे। झंडा नहीं गिरने दिया, पहले एक बाजू कटा तो दूसरे में पकड़ा, जब वो गिरा तो वो दोनों टुंड से बनाकर उनको इकट्ठा करके सीने से थाम लिया, इससे पहले कि दुनिया से जाते जान जाती किसी दूसरे को झंडा थमा दिया। ये रोमांटिक किरदार है। आज के दौर में हम आम हालात में कर लें तो बड़ी बात है, हम कहते करते नहीं, पढ़ नहीं लिया, नमाज पढ़ी तो है ना, शुक्र करें। अब जरूरी है कि आज भी नमाज पढ़ूं जबकि मैं बहुत मसरूफ हूं, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं तो मैं नमाज पढ़ूं? जी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि फिर आप पे आने वाली मुश्किलें टलेंगी। और ये कोई बंदा कहना चाहिए कोई वो पहुंचा हुआ नहीं हो जाता, ये जो हमारे यहाँ दीनदारों का एक तसव्वुर हमने बना लिया है ना कि वो पानी पे चलते हैं और हवाओं में उड़ते हैं और वो तो अल्लाह से बड़े राबते हैं, ये एक हमारी उल्टी सोच है। असल बात जो मैंने समझी है सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम पे गौर करके, कि मुश्किल हालात में नेकियों वालों की कदर है। हजरत इब्राहिम की जिंदगी में कोई आसान हालात थे? इस काल अलहु रब्बुहु अस्लिम काल अस्लम तुली रब्बिल आलमीन। मुझे तो यही फर्क दिखा है अंबिया कराम की जिंदगी में, सहाबा कराम की जिंदगी में, और आइमा कराम और मुहद्दिसीन मुश्किल हालात की नेकियां उनके दर्जे बुलंद कर गई। आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए तो 1 लाख से ज्यादा सहाबा थे, लेकिन आज किताबों में नाम कितने हैं? 200-250 सहाबा हैं टोटल, बाकी किधर हैं? वो जन्नत में जाएंगे, बट नाम उनके मशहूर हो गए जिन्होंने किसी मुश्किल में साथ दिया। तो दीन के लिए मुश्किल आए सर आंखों पर 100 बिस्मिल्ला, और भी आ जाए मैंने नहीं हटना। हम तो अंदर जरा सा होल करते हैं तो फिर हमारा नफ्स मोटा होता है। याद रखिए, शैतान को सबसे बुरे हम तब लगते हैं जब हम दूसरों की खैर का काम कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। बात तो इस पे और भी बहुत हो सकती है, लेकिन अभी इतना ही काफी है।